आत्मतत्व का विवेचन। ईशावास्योपनिषद सभी उपनिषदों में सर्वप्रथम है। यह लघुकाय होते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें ज्ञान कांड का निरूपण किया गया है। इस उपनिषद में कुल 18 मंत्र हैं। इन मंत्रों में आत्मतत्व का विवेचन किया गया है। ये मंत्र आत्मा के स्वरूप का प्रकाशन करके आत्म संबंधी स्वाभाविक ज्ञान अज्ञान को निवृत्त करते हुए संसार के शोक मोह आदि धर्मों के विच्छेद के साधन स्वरूप आत्मैकत्वादि विज्ञान को उत्पन्न करते हैं। सर्वप्रथम यह आत्मा जिस महान विभूति अर्थात परमात्मा या ईश्वर का अंश है, उस ईश्वर की सर्वव्यापकता का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि यह निखिल विश्व उस ईश्वर से व्याप्त है। इस प्रकार वह ईश्वर चराचर जगत की आत्मा है। ऐसी भावना से युक्त होकर प्राणी मात्र को त्याग के द्वारा भोग करने का उपदेश दिया गया है। अतः आत्मवेत्ता को ऐषणाओं का त्याग करते हुए ज्ञान निरत रहकर आत्मा की रक्षा करनी चाहिए, किंतु आत्मा के स्वरूप को जानने की इच्छा न रखने वाले मनुष्य के लिए भी कर्म का उपदेश दिया गया है। यदि इस संसार में अपनी पूरी आयु तक जीने की इच्छा रखता है तो उसे कर्म करते हुए ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि यदि वह याज्ञिक शुभ कर्म नहीं करता तो उससे अशुभ कर्मों का निवारण नहीं हो पाएगा। इसके बाद ऋषि अज्ञानी व्यक्तियों की निंदा करते हुए कहता है, जो मनुष्य आत्मा का हनन अर्थात तिरस्कार करते हैं वे अज्ञान से आच्छादित असुर संबंधी लोकों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आत्मतत्व के अभाव से उत्पन्न दुखद परिणाम की ओर भी संकेत किया गया है। जिस आत्मतत्व का तिरस्कार करने से अज्ञानी लोग संसार चक्र में फंसे रहते हैं और उसके विपरीत ज्ञानी लोग मुक्त हो जाते हैं। आत्मतत्व क्या है और कैसा है, इस विषय में प्रस्तुत उपनिषद में कई मंत्रों द्वारा बतलाते हुए आत्मा के स्वरूप का विशद प्रतिपादन किया गया है। सर्वप्रथम आत्मतत्व के वैशिष्ट्य को बतलाता हुआ ऋषि कहता है कि वह आत्मतत्व अपने स्वरूप से विचलित न होने वाला, एक और मन से भी तीव्र गति वाला, सबसे आगे जाने और कारण इंद्रियां उसे प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। वह स्थिर होते हुए भी सभी गतिशील पदार्थों का अतिक्रमण कर जाता है तथा उसकी सत्ता में ही वायु समस्त प्राणियों के प्रवृत्ति रूप कर्मों का विभाजन करता है। वह आत्मतत्व मूल स्वरूप से स्थिर होते हुए भी औपाधिक रूप से गतिशील है। वह ज्ञानियों के लिए उनके पास एवं अज्ञानियों के लिए उनसे बहुत दूर है। वह आत्मा सबके अंदर है और सबके बाहर भी। आगे पुनः उसी आत्मतत्व का विवेचन करते हुए ऋषि कहता है कि वह आत्मा सर्वगत शुद्ध अशरीरी अक्षत स्नायु से रहित निर्मल अपापबद्ध सर्वद्रष्टा सर्वज्ञ सर्वोत्कृष्ट एवं स्वयंभू है। वही नित्य सिद्ध संवत्सर नामक प्रजापतियों के लिए यथा योग्य रीति से अर्थों का विभाग करता है। इस प्रकार के स्वरूप वाला आत्मा सभी प्राणियों में समान रूप से रहता है। अतएव जो साधक संपूर्ण प्राणियों को आत्मा में तथा संपूर्ण प्राणियों में आत्मा को देखता है, वह इस सर्वात्म्य दर्शन के कारण किसी से घृणा नहीं करता। इस स्थिति में जब सभी प्राणी आत्मस्वरूप हो गए तब अभेददर्शी एवं एकत्वदर्शी ज्ञानी मनुष्य को शोक और मोह नहीं होता। इस आत्मतत्व का दर्शन करने हेतु प्रत्येक जिज्ञासु व्यक्ति प्रवृत्त होता है, क्योंकि आत्मतत्व के साक्षात्कार से अमरत्व अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो सत्य है वही आदित्य है और जो पुरुष आदित्य मंडल में है वही सत्य है। अतएव साधक उस सत्य का साक्षात्कार करने के लिए पूषण से सहयोग की याचना करता हुआ कहता है कि आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म मुख ज्योतिर्मय हिरण्य पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण, तुम मुझ सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने हेतु उस पात्र से ढक्कन को अलग कर दो। साधक की यह याचना साधिकार है और वह आदेशात्मक स्वर में विनयपूर्वक कहता है, कि आप अपने तेज को समेट लीजिए। यह आपका जो अतिशय कल्याणमय रूप है उसे मैं देख रहा हूँ। यह जो आदित्य मंडल स्थल पुरुष है वही मैं हूँ। इस प्रकार सत्य आत्मा का साक्षात करने के बाद इस नश्वर शरीर को छोड़ने की अवस्था में साधक अपने मन को विगत कर्मों का स्मरण करने की प्रेरणा देता है एवं अंत में अग्नि से अमरत्व प्राप्ति हेतु अच्छे मार्ग से ले चलने का निवेदन करता है। अग्नि नय सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वायुनानि विद्वान युयोध्यस्म जुहुराण मेनो भुयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम।